13/1/78 की अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली। इंतजार के पहले इंतजाम करो, कल्याणकारी महादानी महान वरदानी बनाने वाले दया के सागर पिता शिव वत्सों से बोले। आज बाप बच्चों को देख सदा हर्षित होते हैं। हर एक बच्चा वर्तमान समय में विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है और भविष्य में भी विश्व द्वारा पूजनीय है। ऐसे सर्वश्रेष्ठ गायन और पूजन योग्य योगी तो आत्माएं, ज्ञानी तो आत्माएं, दिव्य गुणधारी सदा विश्व के सेवादारी बाप दादा के सदा स्नेह और संयोग में रहने वाले ऐसे बच्चों को देख बाप को कितनी खुशी होती है। नंबरवार होते हुए भी लास्ट नंबर का मनका भी विश्व के आगे महान है। ऐसे अपनी महानता को, अपनी महिमा को जानते हुए चलते रहते हो या चलते चलते अपने को साधारण समझ लेते हो? अलौकिक बाप द्वारा प्राप्त हुई अलौकिक जीवन, अलौकिक कर्म साधारण नहीं है। लास्ट नंबर के मनके को भी आज अंत तक भक्त आत्माएं आंखों पर रखती है, क्योंकि लास्ट नंबर भी बाप दादा के नैनों के तारे है, नूरे रतन है। ऐसे नूरे रतन को अब तक भी नैनों पर रखा जाता है। अपने श्रेष्ठ भाग्य को जानते हुए वर्णन करते हुए अनजान नहीं बनो। एक बार भी मन से, सच्चे दिल से अपने को बाप का बच्चा निश्चय किया, उस एक सेकंड की महिमा और प्राप्ति बहुत बड़ी है। डायरेक्ट बाप का बच्चा बनना जानते हो कितनी बड़ी लॉटरी है? एक सेकंड में नाम संस्कार शूद्र से ब्राह्मण हो जाता है, संसार बदल जाता, संस्कार बदल जाते, दृष्टि वृत्ति स्मृति सब बदल जाता एक सेकंड के खेल में। ऐसा श्रेष्ठ सेकंड भूल जाते हो। दुनिया वाले अब तक नहीं भूले हैं। आप आत्माएं चक्कर लगाते बदल भी गई, लेकिन दुनिया वाले नहीं भूले। अभी आप सबका भाग्य वर्णन करते इतने खुश होते हैं, समझते हैं भगवान ही मिल गया। जब दुनिया वाले नहीं भूले हैं, आप स्वयं अनुभवी मूरत तो सर्व प्राप्ति करने वाली आत्माएं हो, फिर भूल क्यों जाते हो? भूलना चाहिए नहीं, लेकिन भूल जाते हो। इस नए वर्ष में बाप दादा को कौन सी नवीनता दिखाएंगे? जो समय दिया हुआ था उस प्रमाण तो सब संपूर्ण ही दिखाई देते। जब लक्ष्य सत्यतर का रखा, सत्यतर अर्थात सन 1977 का रखा, तो लक्ष्य प्रमाण सर्व ब्राह्मण आत्माओं का अपना पुरुषार्थ संपन्न होना चाहिए। आप तो परिवर्तन के लिए तैयार होना। अब का जो समय मिला है वह ब्राह्मणों के स्वयं पुरुषार्थ के लिए नहीं है, लेकिन हर संकल्प हर बोल द्वारा दाता के बच्चे विश्व की आत्माओं प्रति प्राप्त हुए खजानों को देने अर्थ है। वह एक्स्ट्रा टाइम स्वयं के पुरुषार्थ प्रति नहीं, लेकिन दूसरों के प्रति समय, गुण और खजाना देने के लिए है। बाप ने जिस कार्य के लिए समय और खजाना दिया है, अगर उसके बदले स्वयं प्रति समय और संपत्ति लगाते हो, तो यह भी अमानत में खयानत होती है। यह विशेष वर्ष ब्राह्मण आत्माओं के प्रति महादानी वरदानी बनने का है। जैसे आप लोग प्रोग्राम बनाते हो कि इस मास में विशेष योग का प्रोग्राम होगा, दूसरे मास में विशेष सेवा का होगा, वैसे ड्रामा प्लान अनुसार यह एक्स्ट्रा समय महादानी बनने के लिए मिला है। अब तक पुरानी भाषा, पुरानी बातें, पुरानी रीति रस्म, वह अच्छी रीति सब जानते हो। इस वर्ष का समय इसके लिए नहीं है। जैसे बाप के आगे स्वयं को समर्पण किया, वैसे अब अपना समय और सर्व प्राप्तियां, ज्ञान, गुण और शक्तियां विश्व की सेवा अर्थ समर्पण करो। जो संकल्प उठता है तो चेक करो कि विश्व सेवा प्रति है। ऐसे सेवा प्रति अर्पण होने से स्वयं संपन्न सहज हो जाएंगे। जैसे जब कोई सेवा का विशेष प्रोग्राम बनाते हो, तो विशेष कार्य भी बिजी होने के कारण स्वयं के आराम या स्वयं के प्रति सेल्वेशन देने वाली बातें या चलते चलते अन्य आत्माओं द्वारा आई हुई छोटी छोटी परीक्षाओं को अटेंशन नहीं देते हो, अवॉइड करते हो, क्योंकि सदा कार्य को सामने रखते हो और बिजी रहते हो। स्वयं प्रति समय न लगाकर सेवा में विशेष लगाते हो। ऐसे ही इस नए वर्ष में हर सेकंड और संकल्प को सेवा प्रति समझने से, इस कार्य में बिजी रहने से परीक्षाओं को पास ऐसे करेंगे जैसे कुछ है ही नहीं। संकल्प में भी नहीं आवेगा कि यह बात क्या थी और क्या हुआ। स्वयं को समर्पण करने से इस सेवा की लगन में यह छोटे बड़े पेपर्स या परीक्षाएं स्वतः ही समर्पण हो जावेंगी। जैसे अग्नि के अंदर हर वस्तु का नाम रूप बदल जाता है, वैसे परीक्षा का नाम रूप बदल परीक्षा प्राप्ति का रूप बन जावेगी। माया शब्द से घबराएंगे नहीं, सदा विजय बनने की खुशी में नाचते रहेंगे। माया को अपनी दासी अनुभव करेंगे तो दासी सेवाधारी बनेगी या घबराएंगे? स्वयं सरेंडर हो जाओ सेवा में तो माया स्वतः ही सरेंडर हो जाएगी। लेकिन सरेंडर नहीं होते हो तो माया भी अच्छी तरह से चांस लेती है। चांस लेने के लिए लेने के कारण ब्राह्मणों का भी चांसलर बन जाती है। माया को चांसलर बनने नहीं दो, स्वयं सेवा का चांस ले चांसलर बनो। अब सुना समय क्यों मिला है? अब कोई कंप्लेन नहीं करना। समय के हिसाब से हर एक को कंप्लीट होना है। कंप्लीट आत्मा कभी कंप्लेन नहीं करती है। हो ही जाता होता ही है, यह भाषा नहीं बोलती। नया वर्ष, नई भाषा, नया अनुभव। पुरानी चीज संभालना अच्छा लगता है, लेकिन यूज करना अच्छा नहीं होता। तो आप यूज क्यों करते हो? 5000 वर्ष के लिए संभाल कर रख दो। पुराने से प्रीत नहीं रखो। सदैव भक्त आत्माओं, भिखारी आत्माओं और प्यासी आत्माओं के सामने अपने को साक्षात बाप और साक्षात्कार मूरत समझकर चलो। तीनों ही लाइन लंबी है, इस क्यू को समाप्त करने में लग जाओ। प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाओ, भिखारियों को दान दो, भक्तों को भक्ति का फल, बाप के मिलन का मार्ग बताओ। इस क्यू को संपन्न करने में बिजी रहेंगे तो स्वयं के प्रति क्यू की क्यू समाप्त हो जाएगी। समय की इंतजार में नहीं रहो, लेकिन तीनों प्रकार की आत्माओं को संपन्न बनाने के इंतजाम में रहो। अब तो नहीं पूछेंगे कि विनाश कब होगा। क्यू को समाप्त करो तो परिवर्तन का समय भी समाप्त हो जाएगा। संगम का समय सत्युग से श्रेष्ठ नहीं लगता है? थक गए हो क्या? जब पूछते हो विनाश कब होगा तो थके हुए हो, तब तो पूछते हो। बाप का बच्चों से अति स्नेह है। बाप को यह मेला अच्छा लगता है और बच्चों को स्वर्ग अच्छा लगता है। स्वर्ग तो 21 जन्म मिलेगा ही, लेकिन यह संगम नहीं मिलेगा। तो थक मत जाओ, सेवा में लग जाओ तो प्रत्यक्ष फल अनुभव करेंगे। भविष्य फल तो आपका निश्चित है ही, लेकिन प्रत्यक्ष फल का अनुभव, सुख सारे कल्प में नहीं मिलेगा। इसलिए भक्तों की पुकार सुनो, रहमदिल बनो, महादानी बन, महान पुण्यात्मा का पाठ बजाओ। अच्छा, ऐसे बाप के फरमान बरदार, दृढ़ संकल्प और सेकेंड में आज्ञाकारी बाप समान सदा विश्व के कल्याणकारी, महादानी महान वरदानी, सर्व को संपन्न करने वाले, सदा स्वयं को सेवा में तत्पर करने वाले, ऐसे बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दीदी जी से बातचीत। सबको एक बात का इंतजार है, वह कौन सी बात है? जो शुरू की पहली है, मैं कौन, वही लास्ट तक भी है। सबको इंतजार है आखिर भी भविष्य में, मैं कौन या माला में मैं कहा, अब यह इंतजार कब पूरा होगा? सब एक दो में रूहरहान भी करते हैं, 8 में कौन होंगे, 100 में कौन होंगे, 16000 का तो कोई सवाल ही नहीं। आखिर भी 8 में या 100 में कौन होंगे? विदेशी सोचते हैं हम कौन सी माला में होंगे, लास्ट में आने वाले सोचते हैं हम कौन सी माला में होंगे, और शुरू में आने वाले फिर सोचते हैं लास्ट सो फास्ट है, ना मालूम हमारा स्थान है या लास्ट वाले का है। आखिर हिसाब क्या है? किताब तो बाप के पास है ना, फिक्स नहीं किए गए हैं। आप लोगों ने भी 8 कंपटीशन की तो चित्र कैसे चुना? पहले थोड़े अलग किए, फिर उसमें से 1, 2, 3 नंबर लगाया। पहले चुनने होते हैं, फिर नंबरवार फिक्स होते हैं। तो अब चुने गए हैं लेकिन फिक्स नहीं हुए हैं। अब पीछे आने वालों का क्या होगा? सदैव कुछ सीट्स अंत तक भी होती है, रिजर्वेशन होती है तो भी लास्ट तक कुछ कोटा रखते हैं, लेकिन वह कोटों में कोई, कोई में भी कोई होता है। अच्छा, आप सब किस माला में हो? अपने में उम्मीदें रखो, कोई न कोई ऐसी वंडरफुल बात होगी जिसके आधार पर आप सबकी उम्मीदें पूरी हो जाएंगी। अष्ट रत्नों की विशेषता एक विशेष बात से है। अष्ट रत्न प्रैक्टिकल में जैसे यादगार है, वैसे विशेष तो जो अष्ट शक्तियां हैं, वह हर शक्ति उनके जीवन में प्रैक्टिकल दिखाई देगी। अगर एक शक्ति भी प्रैक्टिकल जीवन में कम दिखाई देती, तो जैसे अगर मूर्ति की एक पूजा खंडित हो तो पूजनीय नहीं होती, इसी प्रकार से अगर एक शक्ति की भी कमी दिखाई देती तो अष्ट देवताओं की लिस्ट में अब तक फिक्स नहीं कह जाएंगे। दूसरी बात, अष्ट देवताएं भक्तों के लिए विशेष इष्ट माने जाते हैं। इष्ट अर्थात महान पूज्य। इष्ट द्वारा हर भक्त को हर प्रकार की विधि और सिद्धि प्राप्त होती है। यहां भी जो अष्ट रत्न होंगे वह सर्व ब्राह्मण परिवार के आगे अब भी इष्ट अर्थात हर संकल्प और चलन द्वारा विधि और सिद्धि का मार्गदर्शन करने वाले सबके सामने अब भी ऐसे ही महान मूरत माने जाएंगे। तो अष्ट शक्तियां भी होंगी और परिवार के सामने इष्ट अर्थात श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, वरदानी आत्मा के रूप में होंगे। यह है अष्ट रत्नों की विशेषता। अच्छा, पार्टियों से बातचीत में बच्चों के प्रति उचारे अनमोल ज्ञान रत्न। 1, दुनिया के वाइब्रेशन से अथवा माया से सेफ रहने का साधन सदा एक बाप दूसरा न कोई, जो इसी लगन में मगन रहते वह माया के हर प्रकार के वार से बचे रहते हैं। जैसे जब लड़ाई के समय बॉम्ब्स गिराते हैं तो अंडरग्राउंड हो जाते, उसका असर उन्हें नहीं होता, तो ऐसे ही जब एक लगन में मगन रहते तो दुनिया के वाइब्रेशन से माया से बचे रहेंगे, सदा सेफ रहेंगे। माया की हिम्मत नहीं जो वार करे, लगन में मगन रहो, यही है सेफ्टी का साधन। 2, बाप के समीप रत्नों की निशानी। बाप के समीप रहने वालों के ऊपर बाप के सत के संग का रंग चढ़ा हुआ होगा। सत के संग का रंग है रूहानियत, तो समीप रतन सदा रूहानी स्थिति में स्थित होंगे। शरीर में रहते हुए न्यारे रूहानियत में स्थित रहेंगे। शरीर को देखते हुए भी न देखे, और आत्मा जो न दिखाई देने वाली चीज है वह प्रत्यक्ष दिखाई दे, यही कमाल है। रूहानी मस्ती में रहने वाले ही बाप को साथी बना सकते, क्योंकि बाप रूह है। 3, पुरानी दुनिया के सर्व आकर्षणों से परे होने की सहज युक्ति। सदैव नशे में रहो कि हम अविनाशी खजाने के मालिक हैं। जो बाप का खजाना ज्ञान, सुख, शांति, आनंद है, वह सर्वगुण हमारे है। बच्चा बाप की प्रॉपर्टी का स्वतः ही मालिक होता है। अधिकारी आत्मा को अपने अधिकार का नशा रहता है। नशे में सब भूल जाता है ना, कोई स्मृति नहीं होती। एक ही स्मृति रहे बाप और मैं। इसी स्मृति से, पुरानी दुनिया के आकर्षण से ऑटोमेटिकली परे हो जाएंगे। नशे में रहने वाले के सामने सदा निशाना भी स्पष्ट होगा। निशाना है फरिश्तेपन का और देवतापन का। चार, एक सेकंड का वंडरफुल खेल जिससे पास विद ऑनर बन जाए। एक सेकंड का खेल है अभी अभी शरीर में आना और अभी अभी शरीर से अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना। इस सेकंड के खेल का अभ्यास है जब चाहो जैसे चाहो उसी स्थिति में स्थित रह सको। अंतिम पेपर सेकंड का ही होगा। जो इस सेकंड के पेपर में पास हुआ वही पास विद ऑनर होगा। अगर एक सेकंड की हलचल में आया तो फेल, अचल रहा तो पास। ऐसी कंट्रोलिंग पावर है। अभी ऐसा अभ्यास तीव्र रूप का होना चाहिए। जितना हंगामा हो उतना स्वयं की स्थिति अति शांत। जैसे सागर बाहर आवाज संपन्न होता अंदर बिल्कुल शांत, ऐसा अभ्यास चाहिए। कंट्रोलिंग पावर वाले ही विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं। जो स्वयं को नहीं कर सकते वह विश्व का राज्य कैसे करेंगे। समेटने की शक्ति चाहिए। एक सेकंड में विस्तार से सार में चले जाए और एक सेकंड में सार से विस्तार में आ जाए, यही है वंडरफुल खेल। पांच, अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहो। आपको सभी आत्माएं सुख में झूलता देख दुखी से सुखी बन जाए। आपके नयन, मुख, चेहरा सब सुख दे, ऐसा सुखदाई बने। ऐसा सुखदाई जो बनता उसे संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आ सकती। अच्छा, इस मुरली की विशेष बातें, पहली पॉइंट है जो जितना हल्का होता उतना अथक होता, किसी भी प्रकार का बोझ थकाता है। दूसरी पॉइंट है मधुबन विश्व के आगे स्टेज है। स्टेज पर जो एक्टर होता है उसका हर एक्ट पर कितना अटेंशन रहता है। मधुबन में आना अर्थात कमाई की खान इकट्ठा करना। तीसरी पॉइंट है तपस्वी की तपस्या सिर्फ बैठने के समय नहीं। तपस्या अर्थात लगन, चलते फिरते भोजन करते भी लगन। चौथी पॉइंट है नॉलेज की शक्ति के आधार पर परिस्थिति जो पहाड़ के मुहाफिक है वह भी राई अनुभव होगी, अर्थात कुछ नहीं, क्योंकि नथिंग न्यू। अच्छा, ओम शांति।